फिर मिट्टी, तांबा, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए। इस मूर्ति के टुकड़े खेत में भूसे की तरह पड़े हुए थे। फिर हवा इन टुकड़ों को उड़ाकर ले गई और वहां कुछ भी ना बचा। फिर पत्थर का वो टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की शक्ल में बदल गया, चेंज हो गया और सारी जमीन पर छा गया। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए हजारों अंबिया कराम भेजे। इन्हीं नबियों में से एक नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम जिस इलाके में आपकी विलादत हुई उसके बादशाह को नजूमिया ने बताया कि आज की रात तेरी सल्तनत में इन इन खूबियों वाला एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। ये सुनकर बादशाह ने कसम खाई कि वो आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर देगा। और उसने ये हुक्म अपने सिपाहियों को दे दिया कि आज की रात जो भी बच्चा पैदा हो उसे मार दिया जाए। सो जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर अमल करते हुए आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर शेर के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन अल्लाह पाक की मदद से शेरों ने आप अलैहिस्सलाम को कुछ भी ना किया, बल्कि शेर और शेरनी आप अलैहिस्सलाम के मुबारक तलवे चाटने लगे। आप अलैहिस्सलाम की वालदा घबराई हुई पिंजरे के पास आई तो जब आपने देखा कि शेर और शेरनी आपके बच्चे के तलवे चाट रहे हैं तो ये देखकर आप मुतमईन और पुरसकून हो गई और यूं अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को उस बादशाह के जुल्म और सितम से बचा लिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँच गए। नाज़रीन, कौन था ये जालिम बादशाह जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए एक पैदाइशी बच्चे को शेरों के पिंजरे में डाल दिया था? ये है हमारी आज की वीडियो का तारीखी दुश्मन, हिस्टोरिक दुश्मन, बख्ते नसर। बख्ते नसर कौन था? ये कौम इमालिका का एक लड़का था जो इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला था। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। ये लड़का बड़ा होकर बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबिल का गवर्नर बना। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। अल्लाह पाक ने इसको पूरी जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। ये एक जालिम, जाबिर और काफिर बादशाह था। ये बनी इसराइल पर अजाब के तौर पर मुसल्लत हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि तौरात में बनी इसराइल को बता दिया गया था कि ज़रूर तुम ज़मीन में दो मरतबा फसाद करोगे। सो जब पहला फसाद का वक्त आया तो ये हुआ कि बनी इसराइल तौरात के अहकाम पर अमल करना छोड़ने लगे। उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी शुरू कर दी, गुरूर व तकब्बुर और कमज़ोरों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिया और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को शहीद करने लगे। उस वक्त यमन का एक गांव था। उस गांव वालों की हिदायत के लिए हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से बहुत पहले अल्लाह पाक ने एक नबी को भेजा जिनका नाम मूसा बिन मीशा था। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पर पोते थे। गांव वालों ने आप अलैहिस्सलाम को झुटलाया और फिर आपको बेरहमी से कत्ल कर दिया। बनी इसराइल के इन जुल्म सितम और इनकी दूसरी नाफरमानियों की वजह से इन पर खुदा का अजाब उतरा। वो इस तरह कि शहर बाबिल का जालिम और जाबिर बादशाह बख्ते नसर बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। ये काफिर बादशाह था। इसने बहुत बड़ी फौज के साथ माजल्ला बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और शहर के 100,000 लोगों को कत्ल कर दिया और 100,000 लोगों को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर दिया। 100,000 को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। बनी इसराइल के उलमा को बड़े बुरे तरीके से कत्ल किया, तौरात को जलाया, मस्जिद बैतुल मुकद्दस को खराब और वीरान किया और इनके गांव वालों जिन्होंने हजरत मूसा बिन मीशा अलैहि सलाम को शहीद किया था, बख्ते नसर ने बड़ी बेदर्दी के साथ पूरे गांव के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और सब औरतों को गिरफ्तार करके अपना गुलाम बना दिया और शहर को बर्बाद करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। जब शहर में कत्लेआम शुरू हुआ तो गांव वाले भागने लगे। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि ऐ गांव वालों, मत भागो और अपने घरों में अपने मालो दौलत को लेकर आराम और चैन के साथ जिंदगी बसर करो। कहाँ भाग रहे हो? ठहरो, ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के खून ना हक का बदला है तो तुम्हें मिल रहा है। आसमान से मलाइका की ये आवाज़ पूरे गांव में आती रही और बख्ते नसर के लश्करों की तलवारें इनका सर उड़ाती रहीं। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो अपने गुनाहों और जुर्मों का इकरार करने लगे, मगर इनके रोने धोने का इनको अब कोई फायदा नहीं पहुंचना था। गांव में हर तरफ खून की नदियां बह गईं और सारा गांव तहस नहस हो गया। नाज़रीन, जब बख्त नज़र ने हमला करके बनी इसराइल को कत्लो कैद किया तो अल्लाह के नबी हज़रते दानियाल अलैहिस्सलाम भी इन कैद होने वालों में शामिल थे। बख्त नज़र आपके पास से गुजरा तो इन्हें भी कैद में डालने का हुक्म दिया। फिर इसने दो शेर मंगवाए जिन्हें एक खुश कुएं में फेंका और आप अलैहिस्सलाम को भी उसी कुएं में डालकर ऊपर से कुएं का मुंह बंद कर दिया। फिर 5 दिन बाद जब इसने वो कुआं खोला तो वो दुश्मन खुदा ये देखकर हैरान रह गया कि आप अलैहिस्सलाम उसमें ना सिर्फ सही सलामत हैं बल्कि एक तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और दोनों शेर कुएं के एक कोने में खामोशी और सुकून से बैठे हैं और इन शेरों ने आप अलैहिस्सलाम को छोटी सी भी चोट नहीं पहुंचाई। ये देखकर बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ दानियाल, मुझे भी बताइए कि आपने ऐसा क्या पढ़ा जिससे ये शेर आपसे दूर रहे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने ये कहा था कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो अपना जिक्र करने वालों को भूलता नहीं है, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जो उसे मायूस नहीं करता जिसने उसे पुकारा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो अपने ऊपर भरोसा करने वालों को किसी और के हवाले नहीं करता। नाज़रीन, ये तो था शेरों का मामला, लेकिन इसके अलावा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए भूख और प्यास को भी मिटाना होता है। तो इस बारे में किताबों में आता है कि जब इस कुएं में आप अली सलाम को भूख और प्यास महसूस हुई तो अल्लाह पाक ने मुल्क शाम में हज़रत इर्मिया अली सलाम को वही फरमाई कि हज़रत दानियाल अली सलाम के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं अर्ज़ मुकद्दस में हूँ जबकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबिल में हैं, यानी मैं उन तक खाने पीने की चीज़ें कैसे पहुँचाऊँगा। तो अल्लाह पाक ने वही फरमाई, हमने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसे तैयार करो, हम इसे भेज देंगे जो तुम्हें और तुम्हारे तैयार किए गए खाने पीने के सामान को उठाकर बाबिल पहुँचा दे। चुनाचे जब आप अली सलाम ने खाना तैयार कर लिया तो अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता भेजा जिसने हज़रत इर्मिया अली सलाम और खाने पीने की चीज़ों को कुएं के किनारे पर पहुंचा दिया। हज़रत दानियाल अली सलाम को कुएं के किनारे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो आप अली सलाम ने पूछा कि कौन है। हज़रत इर्मिया अली सलाम ने फरमाया, मैं इर्मिया हूँ। आप अली सलाम ने फरमाया, कैसे आना हुआ। फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने भेजा है। आपने पूछा कि मेरे रब ने मुझे याद किया है। हज़रत इर्मिया ने जवाब दिया, जी हाँ, इस तरह अल्लाह पाक ने आप तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जो यकीनन अक्ल को हैरान कर देने वाला और अनबिलीवेबल मौजज़ा था। नाज़रीन, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बयान करने में बहुत महारत रखते थे, बड़े एक्सपर्ट थे। एक मरतबा बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर आपने बताई थी। वाकया कुछ इस तरह है कि बख्त नसर ने एक मरतबा एक अजीबो गरीब और परेशान कर देने वाला ख्वाब देखा और जब वो सुबह उठा तो वो उसे ख्वाब भी याद ना रहा जिससे वो मजीद परेशान हो गया। बख्त नसर ने आप अली सलाम के पास आकर कहा कि क्या आप मुझे मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बता सकते हैं, यानी वो आपको चेक कर रहा था, आप पे टेस्टर लगा रहा था कि क्या वाकई आप नबी हैं भी या नहीं। इसी वजह से उसने ख्वाब भी नहीं बताया बल्कि कहा ख्वाब और उसकी ताबीर बता सकते हैं। आप अली सलाम ने फरमाया, ऐ बादशाह, तू जिस राज के बारे में पूछ रहा है इसे कोई जादूगर कोई नजूमी नहीं बता सकता। हाँ, आसमान का मालिक ऐसा खुदा है जो छुपे हुए राज को जाहिर कर देता है। उस खुदा ने बख्त नसर को उसके ख्वाब में वो बता दिया जो होने वाला है। ऐ बादशाह, तू अपने बिस्तर पर लेटे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, इसी हाल में तुझे नींद आ गई और छुपी चीज़ों को जाहिर करने वाले खुदा ने तुझे वो कुछ दिखा दिया जो फ्यूचर में होने वाला था। और ऐ बादशाह, खुदा ने वो राज मुझे भी बता दिया है। अब सुन, ख्वाब में तूने अपने सामने एक बड़ी मूर्ति खड़ी देखी है। ये बहुत बड़ी चमकदार और खौफनाक मूर्ति थी। इसका सर प्योर सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पेट और राने तांबे यानी कॉपर की बनी हुई थी। इसकी पिंडलियां लोहे की जबकि कदम लोहे और मिट्टी से बने हुए थे। जब तू इस मूर्ति की तरफ देख रहा था तो तेरी नजरों के सामने एक पत्थर टकरा कर गिर पड़ा, हालांकि उसे किसी शख्स ने काटा नहीं था। फिर वो टुकड़ा उस मूर्ति के पैरों से टकराया तो पैर टुकड़ों में बनकर गिर गया। फिर मिट्टी, तांबा, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए। इस मूर्ति के टुकड़े खेत में भूसे की तरह पड़े हुए थे। फिर हवा इन टुकड़ों को उड़ाकर ले गई और वहां कुछ भी ना बचा। फिर पत्थर का वो टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की शक्ल में बदल गया, चेंज हो गया और सारी जमीन पर छा गया। ए बादशाह, ये तो रहा तेरा ख्वाब, अब मैं तुझे इसकी ताबीर बताता हूँ। ए बादशाह, तुझे आसमान के मालिक खुदा ने सल्तनत, इख्तियार, शान व शौकत और कुव्वत अता की है। सो इस मूर्ति के ऊपर जो सोने का सर था उससे मुराद तुम हो। चांदी के हिस्से से मुराद तुम्हारे बाद आने वाली सल्तनत है, जो तुम्हारी सल्तनत की तरह बड़ी ना होगी। इसके बाद एक तीसरी सल्तनत आएगी जो सारी ज़मीन पर हुकूमत करेगी। तांबे के हिस्से से इस सल्तनत की तरफ इशारा है। इसके बाद एक चौथी हुकूमत आएगी जो लोहे की तरह मजबूत होगी। जैसे लोहे से चीज़ें टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं, ऐसे ही ये चौथी हुकूमत दूसरी सल्तनतों के टुकड़े टुकड़े करके इन्हें कुचल डालेगी। और जो तूने मूर्ति के पैर लोहे और मिट्टी से बने देखे, इससे मुराद ये है कि चौथी हुकूमत एक बटी हुई हुकूमत होगी, यानी तकसीम हुई भी होगी। इस हुकूमत का कुछ हिस्सा तो लोहे की तरह मजबूत होगा और कुछ मिट्टी की तरह कमज़ोर होगा। तुमने जो लोहे को मिट्टी से मिला हुआ देखा, इससे मुराद ये है कि जैसे लोहा और मिट्टी कभी आपस में मिल नहीं सकते, इस तरह चौथी हुकूमत के लोग भी आपस में जमा नहीं होंगे। इन्हीं दिनों में आसमान का मालिक खुदा एक सल्तनत कायम फरमाएगा जो हमेशा हमेशा रहेगी। इसमें तब्दीली यानी चेंज और जवाल यानी ना ख़त्म होने वाला कभी मामला नहीं होगा। ये तमाम मुल्कों और उनके बादशाहों पर गालिब आकर इनकी हुकूमतों का खात्मा कर देगी और कयामत तक हमेशा कायम रहेगी। ये उस पत्थर की ताबीर है जिसे तूने पहाड़ से किसी तोड़ने वाले के बगैर टूटते देखा, यहाँ तक कि इसने लोहे, तांबे और चांदी, सोने को चकनाचूर कर दिया। नाज़रीन, इस ख्वाब की ताबीर इस तरह सच साबित हुई कि बनी इसराइल ने एक लंबे टाइम पीरियड तक बख्त नसर का जुल्म सितम, कैद व गुलामी की तकलीफें बर्दाश्त की। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी नाफरमानियों पर माफ़ियाँ मांगी, अपने गुनाहों से तौबा की और तकब्बुर और फसाद से बाज आ गए। तो अल्लाह पाक ने इन पर यूं करम फरमाया कि इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत लोगों पर गलबा अता फरमाया, मालो दौलत और इनकी औलादों में इनकी मदद फरमाई और इनकी तादाद को बढ़ा दिया। इस गलबे की सूरत यूं हुई कि जब मुल्क फारस के एक बादशाह ने बाबिल पर हमला किया और बख्त नसर की फौजों को हरा कर बाबिल को फतह कर लिया, तो अल्लाह पाक ने इस बादशाह के दिल में बनी इसराइल के लिए शफकत डाल दी। सो इसने इन्हें कैद से आज़ाद कर दिया। फिर इन्हें इनके वतन रवाना करके हज़रत दानियाल अलैहि सलाम को इनका बादशाह बना दिया। सो इस तरह अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को बख्त नसर जालिम और काफिर बादशाह से नजात अता फरमाई। नाज़रीन, वीडियो को एंड करने से पहले आपको हज़रत दानियाल अलैहि सलाम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चुनाचे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हज़रत दानियाल अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई है कि उनकी तदफीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करे। चुनाचे आप अलैहि सलाम की ये दुआ कबूल हुई और आप अलैहि सलाम की वफ़ात के बाद आपका जिस्म पाक सहाबाए कराम के ज़माने में एक ताबूत में रहा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबाए कराम ने तुस्तर को फतह किया, तुस्तर ये फारस का एक शहर था, तो वहाँ ताबूत में एक शख्स का जिस्म देखा। वहाँ के लोग उस ताबूत के वसीले से जंग में गलबा और बारिश मांगा करते थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक ख़त, एक लेटर लिखा और इस ताबूत के बारे में पूछा। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में लिखा कि ये अल्लाह पाक के नबियों में से एक नबी हैं, इनके बदने पाक को न आग खाती है न ज़मीन। तुम और तुम्हारा एक साथी को एक ऐसी जगह देखो जिसके बारे में तुम्हें और तुम्हारे साथी के अलावा किसी को पता ना हो, वहाँ इस ताबूत को दफन कर दो। चुनाचे हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुमनाम जगह पर आप अलैहिस्सलाम की तदफीन फरमा दी।